ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय उर्मिला बेन जी उपस्थित हैं। आप पिछले 33 वर्षों से अभ्यासरत हैं, साथ ही साथ अनेकों को ये ज्ञान का बीज कहो डालने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। नीचे ज्ञानमृत प्रेस में आप अपनी सेवाएं देते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, अमृत संचय किताब पढ़ी आप सबने? किसी ने पढ़ी अमृत संचय? और अमृत कलश आपकी लिखी हुई ये पुस्तकें हैं, बहुत सुंदर दोनों पुस्तकें हैं। तो आप लिखने का कार्य भी करती हैं और ओजस्वी आपकी वाणी है। तो आज आप हमारा ये क्लास लेने जा रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की नींव कहो, फाउंडेशन कहो, आत्मिक स्थिति। उर्मिला बेन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर भट्टे का आधारभूत विषय है ये, और इसकी चर्चा हम एक छोटी सी इंसिडेंट से करेंगे। तैतरीय उपनिषद में एक घटना का जिक्र आता है। एक पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम एक छोटा सा बीज लेकर के आओ। पुत्र की आयु लगभग 8 वर्ष है और वो बच्चा एक चने का दाना लेकर के आता है। पिता पूछता है कि ये क्या है? बच्चा कहता है चने का दाना है। पिता कहता है नहीं, तुम ध्यान से देखो। और बच्चा फिर वही उत्तर देता है। पिता तीसरी बार पूछता है, बच्चा फिर वही उत्तर देता है। पिता संतुष्ट नहीं होता है, फिर कहता है अच्छा तुम इसको तोड़ डालो। जब चने के दाने को तोड़ा गया तो दो दालें अलग अलग हो गई। पिता फिर पूछता अब बताओ ये क्या है? और बच्चा कहता है चने के दो टुकड़े हैं, दो दालें हैं। पिता कहता है बेटा तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो। तो पुत्र कहता है तो आप बता दीजिए। पिता कहता है बेटा चने के इस दाने में चने का नया पेड़ है, और वो पेड़ कैसा बनेगा? जैसा दाना होगा। अगर ये दाना गला हुआ हो, अर्धविकसित हो, भुना हुआ हो, तो पेड़ कैसा बनेगा? और ऐसे समझाते समझाते वो बच्चे को समझाता है कि ये जो शरीर है ये भी एक पेड़ है और इसका भी एक बीज है, और वो बीज है आत्मा, और आत्मा में विचार है। तो बच्चे को कहता है जैसे बीज से पेड़ बनता है ऐसे ही आत्मा से शरीर बनता है, जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर बनेगा। अगर आत्मा सतोगुणी है तो शरीर भी सतोगुणी। तो वो छोटा सा 8 साल का बच्चा समझ जाता है कि इस शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला, इसको रूप देने वाला एक गुप्त बल है। ये प्राचीन काल की विद्या होती थी। आधुनिक काल में तो आप देख लीजिए, बच्चा एमए तक की पढ़ाई पढ़ लेता है लेकिन कहीं भी आत्मा और मन की चर्चा नहीं आती। स्कूल में आप देखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी होती हैं, उसमें मन तो कहीं होता नहीं। हम यहाँ एक सवाल अपने आप से पूछिए कि जैसे हमारे पास सांस लेने के लिए श्वसन नली है, ऐसे ही कोई विचार नली है क्या? जहां विचार उत्पन्न होते हो या विचारों का आवागमन होता हो, नहीं है। तो विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में। और मन की चर्चा बॉडी के पार्ट्स में नहीं होती है, क्योंकि पार्ट्स होते हैं भौतिक, भौतिक शरीर के भौतिक अंग, और जो मन है वो मेटाफिजिकल पावर है, अर्थात मेटाफिजिकल पावर आत्मा की एक शक्ति है, चिंतन शक्ति है। दुनिया में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के श्वास में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कृत्रिम श्वसन प्रणाली है। कहते हैं भाई वो ऑक्सीजन पे रखा हुआ है। और अगर किसी के हृदय में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कृत्रिम रक्त संचरण प्रणाली है। लेकिन मन सोचना बंद कर दे, आत्मा चली जाए, तो कोई कृत्रिम सोचने की प्रणाली है क्या? व्यक्ति चला गया और कोई कृत्रिम मन डाल दिया जाए कुछ दिन कुछ घंटों के लिए, नहीं। इसलिए आत्मा का महत्व सर्वोपरि है। हम आत्माएं हैं, हमारा असली स्वरूप यही है, और हम चलते फिरते ये अनुभव करें कि जिस आवरण को मैं देख रही हूं या जो आवरण लोगों को दिख रहा है वो तो पल पल परिवर्तित हो रहा है। कमाल की बात ये है कि ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कहते हैं रेत के ढेर को हम देख सकते हैं, लेकिन रेत को, रेत का जो कण है उसको देखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो प्रतिदिन कण जितना परिवर्तन होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो कण जितना परिवर्तन इकट्ठे होते होते बड़ा परिवर्तन बन जाता है तब दिखाई देता है। कोई व्यक्ति 10 साल के बाद मिलता है तो हम कहते हैं अरे भाई तुम्हारे तो बाल सफेद हो गए, अरे तुम्हारे चेहरे पे तो रिंकल्स आ गई। तो ये 10 साल का इकट्ठा परिवर्तन दिखता है, लेकिन परिवर्तन तो एवरी मोमेंट हो रहा है। ये शरीर जो कल था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर हम किसी से पूछें कि तुम्हारा 6 साल वाला शरीर कहाँ है, जब 6 साल की आयु में हम थे तो जो कपड़ा पहना था हो सकता है कहीं पड़ा भी हो, लेकिन वो शरीर कहाँ है? 10 साल वाला शरीर कहाँ है? 15 साल वाला शरीर कहाँ है? फोटो में मिल सकता है लेकिन रियल में कहाँ है? कहाँ गया वो शरीर? जैसे सतयुग गया, त्रेता आया, तो सतयुग कहाँ गया? त्रेता कहाँ गया? द्वापर आया, मर्ज हो गया। सतयुग ने रूप बदल लिया, त्रेता बन गया, त्रेता ने रूप बदल लिया, द्वापर बन गया। ऐसे ही शरीर है, 6 साल वाले ने रूप बदल लिया वो 10 साल वाला बन गया, 10 साल वाले ने रूप बदला वो 15 वाला बन गया, रूप बदलता गया। लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है क्या वो भी बदली? 6 साल वाली अलग है, 10 वाली अलग है, 20 वाली अलग है, आत्मा वही है। इसलिए कहती हैं दो ही चीजें दुनिया में अपरिवर्तनशील हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा की भी कलाएं हैं, लेकिन फिर भी आत्मा का रूप वही ज्योति स्वरूप है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना घटती है ना बढ़ती है। इसलिए हम आत्मा को कहते हैं इम्पेरिशेबल, अनडिविजनेबल, इमॉर्टल, जिसके विभाजन नहीं हो सकता और जो नष्ट नहीं हो सकती। हम अपने चारों ओर प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी बातें देखते हैं जिसको देख के हमें समझ में आता है कि दुनिया की चीजें भी शरीर और आत्मा के फार्मूले पे बनी हुई है। हमारे मकान में, पूरे मकान में लाइट का कनेक्शन है, मेन स्विच किसी एक जगह पे है और वहां से वायर्स पूरे मकान में है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, एसी चलता है। एक दिन मान लीजिए फैन खराब हो गया तो देखिए मैकेनिक को हम बुलाएंगे, मैकेनिक क्या करेगा, जो पंखे से जुड़ी हुई वायर्स हैं उनको पहले पावर हाउस से डिस्कनेक्ट करेगा, उसके बाद पंखे पर वर्क करेगा और जब उसे लगेगा कि पंखा ठीक हो गया उसके बाद जिन तारों को उसने डिस्कनेक्ट किया था उनको फिर से जोड़ देगा। शरीर में भी आत्मा की चेतना पांव के अंगूठे से लेकर के सिर तक विस्तृत, हर अंग तक उसकी चेतना फैली हुई। अब शरीर के किसी अंग को ऑपरेट करना हो तो उसका फार्मूला भी यही है। मान लीजिए हमारे हाथ को ऑपरेट करना है, केवल हाथ को, पंजे को, इतने हिस्से को, तो डॉक्टर क्या करता है, पंजे का मेन पावर हाउस से कनेक्शन कट कर देता है, जिसको हम कहते हैं सुन्न किया या जिसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया दिया। तो जैसे पंखा डिस्कनेक्ट हो गया, अब आप पंखे पे कुछ भी वर्क करो आपको करंट नहीं लगेगा, और ये हाथ चेतना से डिस्कनेक्ट हो गया, इसको चाहे चाकू से काटो चाहे कुछ भी करो, ऑपरेट करो तो दर्द नहीं होगा। और जैसे ही हाथ का ऑपरेट करने का काम पूरा होगा डॉक्टर क्या करेगा, एनेस्थीसिया खत्म हो जाएगा और हाथ फिर चेतना से कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं शरीर मकान है और आत्मा इसमें एक बल्ब की भांति जगमगा रही है। आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे, अगर उसके भीतर ट्यूब ना हो तो साइन बोर्ड की कोई कीमत नहीं होती, चाहे कितना भी कीमती हो। अंधेरे में वो तभी जगमगाता है जब उसके भीतर एक बल्ब या ट्यूब जलती है। और सच पूछो तो इस शरीर रूपी साइन बोर्ड के भीतर भी एक बल्ब जगमगाता है जिसके कारण मस्तक पे तेज है, आंखों में रौनक है, चेहरे पे ब्यूटी है। और अगर वो बल्ब अंदर ना हो तो ये साइन बोर्ड भी कैसा लगेगा, जैसे वो साइन बोर्ड लगता अंधेरे में दिखता ही नहीं, ये भी दिखेगा ही नहीं, तिरोहित हो जाएगा। तो दुनिया की कितनी चीजें, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे लौकिक दुनिया में सारा खेल लाइट का है और अध्यात्म की दुनिया में भी सारा खेल लाइट का है। लौकिक दुनिया में लाइट ना हो तो कितने ही डिवाइस काम नहीं करेंगे, छोटे से लेके बड़ा सब कुछ लाइट से चलता है। और बाबा ने कहा था बच्चे आपके आध्यात्मिक दुनिया में भी मूल आधार लाइट है। तो हम सब लाइट है, आध्यात्मिक जगत की रोशनी है। और देखिए एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें हम कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी, या एक और भजन है जिसमें हम कहते हैं अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे। अब ये आंख तो झरोखा है, इसे देखने वाला कौन है? मैं देखता हूं। और कमाल की बात ये है कि जब हम देखते हैं तो भी कहते हैं मैं देखता हूं, सुनते हैं तो भी कहते हैं मैं सुनता हूं, बोलते हैं तो भी कहते हैं मैं बोलता हूं। अब बाहर से तो तीन है, देखने वाला अलग, बोलने वाला अलग, सुनने वाला अलग, लेकिन अंदर जाकर एक ही जगह पहुंचती हैं सारी बातें। तो आंखों रूपी झरोखे से देखने वाला मैं, ये झरोखे नहीं होंगे तो भी मैं अगर देख नहीं सकता तो अनुभव तो कर ही सकता हूं ना। कई बार आदमी का ऑपरेशन हो जाता है, आंखों पे पट्टी होती है, कोई मिलने आता है, पूछता है भाई साहब क्या हालचाल है, तो बिना देखे हम उसको पहचान लेते हैं कि ये कौन मिलने आया, क्योंकि उसकी आवाज के अंदर रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है और आत्मा उसको रियलाइज करती है। इसलिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है रियलाइज। इसका संधि छेद करें तो दो शब्द बनते हैं, रियल जमा आइज। रियल आइज वही है जो रियलाइज करती है। और ये जो दिख रही है ये तो फाल्ज आइज, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो झूठी काया की आंखें भी झूठी। क्यों झूठी? क्योंकि इन्हें केवल सामने का दिखता है, पीठ पीछे का तो दिखता ही नहीं। हमारे पीछे कोई आ भी रहा है तो उसकी पदचाप आंख से नहीं दिखती है, रियलाइज होती है, सुनाई देती है। दूर का नहीं दिखता, दीवार के पार नहीं दिखता, अंधेरे में नहीं दिखता, वृद्धावस्था में नहीं दिखता, आधुनिक युग में तो कईयों को छोटी आयु में भी नहीं दिखता। तो वास्तव में तीसरा नेत्र जो रियलाइज करता है वही सच्चा नेत्र है। और वो तीसरा नेत्र कौन है? मैं आत्मा ही तीसरा नेत्र हूं। कुछ साल पहले शांतिवन के सामने एक यंग लड़के ने देह त्याग किया। वो लड़का बहुत क्रोधी था, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी क्रोध में, माँ भी बहुत डरती थी उससे। और वो जो लोको शेड है, रेलवे का एक विभाग होता है, उसमें काम करता था वो। तो जब अचानक उसकी डेथ हुई तो आबू रोड के समाज सेवियों ने कहा कि भाई इसकी आंखें निकाल लेते हैं। आंखें ठीक ठाक थी और उन्हें आई बैंक में रख दिया गया। और यहीं शांतिवन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में एक अंधा संत रहता है, तब तो अंधा था। उसने अपनी रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि मुझे आंख लगा दी जाए, तो उसे एक आंख लगा दी गई। आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही आंख लगाई जाती है ताकि दूसरी किसी और के काम आ जाए। तो जब उसको आंख लग गई और उसके फॉलोअर्स को पता पड़ा कि हमारे संत को आंख मिल गई, तो हलचल मच गई, चलो भाई चलो संत जी से मिलने चलो, संत जी की नजर से निहाल होने चलो। तो लोग आते गए, उनके सामने बैठते हैं, संत जी प्रवचन करते हैं और लोग कहते हैं हम तो आपकी नजरों से निहाल हो गए। लेकिन जिस नजर से निहाल हो रही है वो नजर कौन सी है? थोड़े दिन पहले ये नजर क्या कर रही थी? थोड़े दिन पहले यही नजर आग बरसाती थी और अब यही नजर शीतलता बरसा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंख का दोष नहीं है, इस झरोखे से झांकने वाला कैसा है, वही चीज ये आगे भेजती है। कोई शीतल है तो ये शीतलता भेजती है, कोई गर्म है तो ये गर्मी भेजती है। इसलिए सब इंद्रियां आत्मा के विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम है, कोई इंद्री दोषी नहीं है। अंदर बैठी आत्मा जैसी होगी वैसे भाव मुख से आंख से प्रकट होंगे। तो हमें अपने इन झरोखों को शीतलता बरसाने के लिए इस्तेमाल करना है। बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? जब आपकी एक एक इंद्री से बाबा के गुण प्रकट होने लगेंगे, और वो गुण प्रकट तब होंगे जब अंदर बैठी आत्मा बाप समान शीतल, बाप समान पवित्र, बाप समान गुणवान बनेगी। हमारे घरों में जो फ्रिज है वो भी इसी फार्मूले पे बना है, कार भी शरीर और आत्मा के फार्मूले पर बनी है, हमारे यहाँ जो मिक्सी है वो भी शरीर के फार्मूले पे बना है। शरीर में कितने अलग अलग अंग है, कान है, उसके फार्मूले पे हमारा ईयरफोन बना, टेलीफोन बना, आंख में जो लेंस है उसको देख करके चश्मा बनाने का ख्याल आया, और हमारे शरीर में जो मिक्सी है जो भोजन को पीसती है उस फार्मूले पे ग्राइंडर बना, मिक्सी बनी। फ्रिज भी इसी फार्मूले पे बना है। फ्रिज में क्या होता है, एक लाइट होती है और वो लाइट बताती है कि फ्रिज का कनेक्शन चालू है, और उसके अलग अलग जो खाने होते हैं उनमें अलग अलग चीजें रखी रहती हैं, कहीं ड्राई फ्रूट है, कहीं मिल्क है, कहीं दही है, कहीं सब्जी है, और भी बहुत चीजें रखी रहती। जब तक लाइट है तब तक वो सब चीजें फ्रेश, और जैसे ही लाइट गई तो हम क्या करते हैं, जल्दी से दूध निकालो, फ्रिज में कनेक्शन गया, फ्रिज की मोटर खराब हो गई, दूध को निकाल लो, सब्जी को निकाल लो, जो भी चीजें बाहर निकालो और दूसरे फ्रिज में रख दो, वहां ये फ्रेश रहेंगी। तो ये भी एक चेतन फ्रिज है। जब तक इसमें लाइट है, इसमें भी कितनी चीजें रखी हैं अलग अलग खानों में, गिनती करो। ऊपर में आंखें हैं, उसके बाद आप देखिए हृदय है, गुर्दे हैं, और भी बहुत सारे फेफड़े हैं, लगभग 5 लीटर इसमें ब्लड है। तो जब तक लाइट है तब तक सारी चीजें फ्रेश, और जैसे ही लाइट चली जाती है डॉक्टर कहते हैं जल्दी से निकाल लो गुर्दा विद इन 1 आवर, तो वो कहीं और काम आ जाएगा। जो भी अंग है टाइम लिमिट के अंदर निकाल लो, दूसरे फ्रिज में रख दो, वहां काम करेंगे, वहां फ्रेश रहेंगे, पर इसमें से निकाल लो। जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर में इतनी तीव्र गति से विघटन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी जो स्मेल है, बैड स्मेल है, वो बहुत तीव्र गति से फैलती है। इसलिए हम सबने सुना है कि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो युद्ध के तुरंत बाद महामारी फैलती थी, क्योंकि इतने सारे बॉडीज को ठिकाने लगाने में बहुत समय लग जाता था, और अगर वो शत्रु पक्ष के बॉडीज हैं और शत्रु पक्ष की हार हो गई तो कौन ये रिस्क उठाए, तो वो सड़ते रहते थे और उनके कारण महामारी फैलती थी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डेड बॉडी को जल्दी से घर से निकाल दिया जाए। अगर हम बाजार में जाते हैं, कोई फल कोई सब्जी मंडी में सड़ रही हो तो वो इतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो जब ये शरीर, इसमें आत्मा है तो ये अमूल्य है, और आत्मा नहीं है तो ये सबसे अधिक खतरनाक है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली चीज है। जो दीपक है उसको भी देखिए, हमारे शरीर से कितना मिलता जुलता है, वो भी मिट्टी का बना है, और उसमें जब एक छोटी सी लो आ गई तो बड़े बड़े राजा भी उसके आगे सिर झुकाते हैं। जैसे ही प्रकाश आया और जैसे ही प्रकाश बुझ गया, दिए को उठा के हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अभी दिवाली आएगी तो उस दिए के आगे लोग क्या क्या कुर्बान करेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आपके भीतर जब आत्म ज्योति जग जाती है तो लोग आप पर कुर्बान जाते हैं, आपका दिव्य प्रकाश लोगों को अनुभव होता है, चारों दिशाओं में फैलता है, लोग खींचे चले आते हैं। आज भी बाबा ने कहा लोग खींचे चले आएंगे कि यहाँ कुछ विशेष है, यहाँ हमें कुछ प्राप्ति होने वाली है। तो वो प्राप्ति होती है आत्मा की रोशनी से। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है, रोशनी ऊपर उठती है, फैलती है, दूरी तक फैलती है और दूर तक के लोगों को आकर्षित करती है। तो हम सबका पुरुषार्थ भी यही है। जब हम आए तो थोड़े से ज्ञान से छोटी सी लो जली थी, और अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है लो बढ़ती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये परफेक्शन को प्राप्त करेगी और इसकी रोशनी सब तक पहुंचेगी। बाबा ने कहा वही प्रत्यक्षता का दिन होगा। तो हम भाई बहन भट्टी भी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें और घी डले और ये और अधिक रोशन होती जाए। तो आप भी देखना कि हर पल हर क्लास के बाद इसकी रोशनी कितनी बढ़ी। बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये जो जगह है साकार दुनिया के हिसाब से भी सबसे अधिक रोशन जगह है, हमारा पांडव भवन, बाबा की ओरिजिनल तपोभूमि। तो यहाँ तो अनजान व्यक्ति आता है उसके अंदर भी प्रखरता आ जाती है, उज्ज्वलता आ जाती है, हमारी रोशनी तो निश्चित ही बढ़ेगी। आत्मा के संबंध में हम जितना अधिक चिंतन करते हैं उतना हम भीतर जाते हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। दो प्रकार के सुख हैं, एक है इंद्रियों का सुख जिसकी लिमिट है, दूसरा है आत्मा का सुख जो अनलिमिटेड है। इंद्रियों के सुख के लिए बाहर की चीजें चाहिए और बाहर की हर चीज लिमिटेड मात्रा में है। इंद्रियों की भोगने की जो ताकत है वो भी लिमिटेड मात्रा में है, पदार्थ भी लिमिटेड है, इंद्रियों की उन्हें इंजॉय करने की ताकत भी लिमिटेड है, आत्मा की इंजॉय करने की ताकत भी अनलिमिटेड है, और आत्मा जिसको इंजॉय करती है वो भी अनलिमिटेड है। इसलिए भर्तृहरि ने बहुत अच्छी बात कही, भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो ना याता वयमेव याता, तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा लेकिन भोगों ने हमको भोग लिया। अब देखिए दुनिया में कितनी प्रकार के साबुन है, हमने साबुन यूज किए लेकिन त्वचा फिर भी लटक गई। साबुन खत्म नहीं हुए, हमारी त्वचा खत्म हो गई। हमने बहुत प्रकार के तेल लगाए फिर भी बाल उड़ गए। तेल खत्म नहीं हुए लेकिन बाल खत्म हो गए। हमने बहुत प्रकार के पदार्थ खाए, दांत चले गए। पदार्थ खत्म नहीं हुए लेकिन दांत खत्म हो गए। तो चीजों ने हमारे दांतों को भोग लिया, बालों को भोग लिया, तब चाकू भोग लिया। दूसरी तरफ आत्मा का जो आनंद है वो आज भी बरकरार है, भले त्वचा कैसी भी हो, बाल कैसे भी हो, दांत कैसे भी हो, लेकिन आत्मा का आनंद डे बाय डे बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, सच्चे अर्थों में आत्मानंद हम है। दुनिया में बहुत महात्मा अपना नाम आत्मानंद रखवाते हैं, वो केवल नाम है लेकिन उसकी अनुभूति हम करते हैं। ये जो हॉल है, इस हॉल में हम सब चेतन भाई बहने बैठे हैं। इस हॉल में बहुत सारी जड़ चीजें भी, सोफा है, पंखा है, माइक है, बहुत सारी जड़ चीजें भी हैं, हम सब चेतन भी हैं। मान लीजिए कोई ट्रेजडी हो जाती है तो इस हॉल में से कौन निकल के भागेगा? हम सब चेतन निकल के भागेंगे, जिसको जो दरवाजा मिलेगा। इसी तरह से इस शरीर के अंदर बहुत सारी जड़ चीजें जो इस शरीर का एक हिस्सा है, ये चीजें भी कमरे का एक हिस्सा है। जब इस शरीर के साथ कोई ट्रेजडी होती है तो इसमें से कौन भागता है? जो चेतन है केवल वही भागती है, और उसके भागने के कई दरवाजे हैं। वो मस्तक से भी भागती है, आंख से भी भागती है, नाक से भी, मुख से भी भागती है। 10 द्वार हैं इसके। कबीरदास जी ने कहा, 10 द्वारे का पिंजरा, या में पंछी पोन, रहिबे को अचरज, जाए अचंभा कोन। भाई ये 10 द्वार का पिंजरा है, इसमें एक पंछी बैठा है, वो इसमें से निकलता नहीं है। आश्चर्य की बात है, सारे दरवाजे खुले, ये आश्चर्य की बात है कि वो इसमें से निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जब तक उसका हिसाब इस शरीर के साथ पूरा नहीं होता तब तक वो निकल नहीं सकता है। और जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन वो रुकेगा नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जब मम्मा ने देह त्याग किया था तो बाबा ने कहा था कि सब बच्चे तपस्या करो, बाबा मम्मा की आत्मा को वापस भेज देंगे। तो हिस्ट्री हॉल में सब बच्चे बैठे और मम्मा की देह तो रखी हुई थी, सारे बच्चे बाबा को कह रहे थे, ये जो मम्मा की बुक बनी है उसमें 13 दिन के जो भोग के संदेश, उसमें एक संदेश की ये बात मैं सुना रही हूँ। तो जब बच्चों ने बहुत योग लगाया तो ऊपर बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्चे जाओ, बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। बच्चे योग भी लगा रहे थे और टकटकी लगाए मम्मा के मुख पर भी देख रहे थे, आत्मा आई की आई, आत्मा आई की आई। तो बाबा के कहने से आत्मा नीचे आई, चक्कर लगाया, प्रवेश हुई शरीर में पर मजा नहीं आया, प्रवेश हुई और वापस चली गई। तो बाबा ने बाद में इस संदेश में सुनाया कि मैंने तो आत्मा को भेजा था लेकिन शरीर के साथ जब उसका हिसाब किताब पूरा हो गया तो उसको ना तो शरीर में कोई ममत्व है, ना कोई आकर्षण है, ना उस शरीर में बैठने में उसे कोई मजा आता है। इसलिए उसने एक बार प्रवेश किया और फिर चली गई, मेरापन खत्म हो गया। तो भले 10 दरवाजे खुले हैं लेकिन जब तक हिसाब किताब है वो अंदर रहेगी, और जैसे ही हिसाब किताब पूरा होगा उसके बाद वो इसे मुड़ करके भी नहीं देखेगी। तो शरीर और आत्मा दोनों में से आत्मा ने शरीर को धारण किया है अपने हिसाब किताब पूरा करने के लिए। एक शरीर में वो कुछ पिछले पूरे करती है और कुछ नए बनाती है, और उन नए बने हुओं को चुकतू करने के लिए फिर से शरीर लेती है। और इस अंतिम शरीर में बाबा हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू करवा देता है। एक बार का साइकिल पूरा हो जाता है, चाहे हम योग बल से चुकतू करें, चाहे दूसरे तरीके से चुकतू करें, और फिर जब हम नए जन्म में आते हैं तो हमारा वो जन्म बिल्कुल खाली खाते से होता है, अर्थात हमारा पूर्व का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। इसलिए उस शरीर में आत्मा बहुत सुख पाती है, वो उसका जीवन मुक्ति का शरीर होता है। प्रथम शरीर हरेक का अपनी अपनी स्टेज के अनुसार होता है, और फिर धीरे धीरे अगले 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 शरीर कर्म बंधन वाले शरीर बनते जाते हैं। ये तो हमने आत्मा के बारे में, आत्मा का ज्ञान विभिन्न तरीकों से समझा, जिसको हम जानते हैं। बाबा भी प्रतिदिन हमें आत्मअभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते हैं, और हमें वैरायटी तरीके से चलते फिरते आत्म अनुभूति करनी है। दुनिया की हर एक चीज को देखते हमें आत्मा से उसका मिलान करना है, ताकि बार बार हम आत्मा की तरफ अपना ध्यान ले जा सके। अनेक जन्मों का जो देह देखने का अभ्यास है वो हमारा टूट जाए। हमारी संपूर्ण साधना का आधार यही है कि हम बार बार आत्म उन्मुख हों, बार बार हमें याद रहे कि इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, देखने वाली मैं आत्मा हूँ, बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्म चिंतन करना है, आत्म अनुभव करना है, आत्मा को निखारना है, आत्मा को धोना है। बार बार हम सब भाई बहनों को अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं आत्म अनुभूति में हूँ, क्या मुझे आत्मा की स्मृति है, ये मुझे कोई दूसरा याद कराए या ना कराए, लेकिन मुझे बार बार ये बात याद करनी है। क्यों याद करनी है? क्योंकि आत्मिक स्थिति निर्लेप स्थिति है। जितना हम अधिक आत्मिक स्थिति में रहेंगे, इस संसार में रहते भी निर्लेप रहेंगे, और निर्लेप रहेंगे अर्थात कर्मों का भार नहीं होगा, तो हम हल्के हो जाएंगे, लाइट बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाएंगे। एक तो कर्म के भार से हल्के, और दूसरे प्रकाशमान, हमारा प्रकाश बढ़ेगा। और यही फार्मूला है हमारी संपूर्णता का। हम सबको संपूर्ण बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका पहला पाठ भी आत्मा है, और अंतिम जो सवाल आएगा वो भी एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, एक सेकंड में फरिश्ते बन जाओ, एक सेकंड में अपने मूल वतन घर में चले जाओ, इस प्रकार से हमारा अंतिम सवाल होगा। हमें सवाल का पता है, लेकिन डेट का नहीं पता कब पूछा जाएगा, इसलिए हमें एवर रेडी रहना है। हमसे कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। एवर रेडी रहने के लिए एक और बहुत सुंदर चीज हमें मदद करेगी, और वो मदद करेगी एक नन्ही सी बूंद। आसमान से हम बूंद को गिरते हुए देखते हैं ना, आत्मा भी बिंदु के समान है, और आसमान से जो गिरती है वो भी एक बूंद है। इसलिए हमने आत्मा को ज्योतिर्बिंदु कहा, आत्मा को भी हम बिंदु कहते हैं। उसी के नाम से हम जो प्रसाद में खाते हैं बूंदी, उसका नाम भी बूंदी पड़ा है, क्योंकि वो भी झरने में से एक बूंद की तरह से नीचे गिरती है, तो बूंद से शब्द बना बूंदी। हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे ही बनते हैं, लेकिन आज हम चर्चा बूंद की कर रहे हैं। बूंद का भी एक साइकिल है, और वो साइकिल निरंतर चलता है, जिसके कारण हमें जीवन मिलता है। और आत्मा बूंद का भी एक साइकिल है, जिसके आधार पर 5000 साल का ये चक्र चलता है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। पहले हम बूंद की कहानी सुनते हैं। बूंद आसमान से जब टपकती है तो एकदम स्वच्छ होती है। आजकल एटमॉस्फेयर में कुछ प्रदूषण है, तो बीच में आते आते उसमें कुछ मिलावट हो जाती होगी, लेकिन पुराने समय में लोग कहते थे कि जो डायरेक्ट पानी है वो बहुत शुद्ध होता है और लोग उसे संग्रह करके रखते थे और औषधि के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अपने परफेक्ट रूप से बूंद नीचे आई अपना रोल प्ले करने के लिए, एक आंगन में गिरी और जिस आंगन में गिरी उस आंगन में जो भी छोटी मोटी अशुद्धि थी वो उसमें मिक्स हो गई, कोई बाल, कोई तिनका, कोई मिट्टी। लेकिन वो आंगन में तो नहीं रहेगी, किसी की छत पे गिरी, आंगन में गिरी, वहीं तो नहीं रहेगी। वहां से वो बहेगी और बाहर जाएगी और बाहर के बड़े नाले में मिलेगी और वहां उसमें कुछ और अशुद्धियां मिलेंगी। उसके बाद वो नाला बहता बहता और बड़े नाले में जाएगा जिसको हम गटर कह सकते हैं और उसमें वो बूंद बिल्कुल काली हो जाएगी। ये उस बूंद का रोल है, प्ले कर रही है वो। अब ये काली बूंद गोरी कैसी हो? प्रकृति ने इसके लिए एक बहुत सुंदर विधि बना रखी है। सूर्य की तेज किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी और ये बूंद अपने ग्रोस रूप को छोड़ करके स्थल रूप को धारण करेगी। ये तरल रूप में ना रह करके वाष्प रूप में आएगी और सूर्य की किरणों से जब वाष्प रूप में इसे खींचा जाएगा तो जो अशुद्धि इस दुनिया से इसने ली थी वो सारी की सारी नीचे रह जाएगी और फिर से इसका कायाकल्प होगा। जिस रूप में ये जमीन पे आई थी उसी रूप में ये वापस ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और इस तरह से शुद्धि और अशुद्धि का ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध की है कि पानी की आयु 5000 साल है, 5000 साल में ये पूरा प्रदूषित हो जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया से ये 5000 साल तक चलती रहती है लेकिन अभी ये अति में अशुद्ध हो जाता है तो फिर एक बहुत बड़े परिवर्तन के माध्यम से इसका शुद्धिकरण होता है, वो हम समझते हैं। ऐसी ही कहानी आत्मा की भी है। आत्मा जब परम धाम से चली और सतयुग में आई तो एकदम शुद्ध थी। उस पहले आंगन में जब ये उतरी तो कितनी शुद्ध थी, लेकिन परिवर्तनशील जगत है, इसमें आत्मा का भी रोल परिवर्तित होता है। उस आंगन में ये लगभग 1250 साल रही और उसके बाद दूसरे आंगन में आई, वहां भी 1250 साल रही, फिर जगह बदली, कुछ अशुद्धि मिक्स हुई और फिर आगे यात्रा करते करते और अशुद्धि मिक्स होते होते धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई, अशुद्धि मिक्स होती गई और कलयुग में आकर के ये बिचारी बिल्कुल काली हो गई। अब ये कैसे शुद्ध हो? शुद्धिकरण के बहुत तरीके अपनाते हैं हम, ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, दुनिया में भी लोग बहुत तरीके अपनाते हैं, सबको पता है आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन फाइनल जो विधि है, सबसे सक्षम जो विधि है, कारगर जो विधि है, वो वही है जो बूंद वाली है। बूंद के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और आत्मा के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ते ही ये अपने ग्रोस रूप को छोड़ करके स्थल रूप में आ जाती है, अर्थात फरिश्ता रूप धारण कर लेती हैं, लाइट के कार्ब में आ जाती हैं। इस ग्रोस बॉडी को, इस बॉडी के रिलेशंस को, इस बॉडी के पदार्थों को नीचे छोड़ करके और फरिश्ता रूप में ये भी उड़ान भरती है और बाबा ने लक्ष्य दिया ब्राह्मण से फरिश्ता। जब तक कोई फरिश्ता नहीं बनेगा तब तक वो देवता बन नहीं सकता। बाबा कहते हैं जिन्होंने थोड़ा ज्ञान सुना वो भी सतयुग में आएंगे, लेकिन उनका पद बहुत हल्का होगा। दास के भी दास, नौकरों के आगे जो चाकर हैं वो, लेकिन जिसको बहुत ऊंचा पद पाना है उसको फरिश्ता बनना ही होगा, क्योंकि फरिश्ता स्थिति हमारी ऐसी स्थिति है जिसमें एक बिल्कुल नाम मात्र भी अशुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता बेहद का है, फरिश्तों में कोई फरिश्ता या कोई फरिश्ती नहीं है, मेल और फीमेल का भेद नहीं है, फरिश्तों में कोई बूढ़ा फरिश्ता और जवान फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों में कोई चाइनीज और जैपनीज फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों में कोई हिंदू फरिश्ता और मुस्लिम फरिश्ता नहीं, अर्थात फरिश्ता रूप सर्व हदों से पार है। देवताई रूप में भी हदें, कोई देवी है कोई देवता है और वो केवल भारत के हैं, लेकिन फरिश्ता सर्व हदों से पार है। तो जब हम लाइट के कार्य में आ जाते हैं तो न कोई हद है, न कोई स्मृति है नीचे की, न कोई स्वभाव है, न कोई संस्कार है, केवल एक ही बात स्मृति में है कि मेरी डोरी बाबा के हाथ है और मैं जैसे हल्का फुल्का एक लाइट का गोला तैर रहा हूँ बादलों के बीच, और मेरी लाइट बेहद रूप में संपूर्ण जहान में जा रही है, जहां भी आत्माएं हैं वहां मेरी लाइट जा रही है, सबका कल्याण सबका भला, सबको ईश्वरीय बल मिले, ईश्वरीय शक्ति मिले, ईश्वरीय वरदान मिले। फरिश्ते का केवल एक ही संकल्प है, कोई मेरी जात वाला है, मेरे कुल वाला है, मेरे देश वाला है, ये फरिश्ते में है ही नहीं। तो ऐसी बेहद की स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो सारी अशुद्धियां, सारी हदें, सारी पुरानी स्मृतियां, भाव स्वभाव नीचे रह जाती हैं, और इस स्थिति में हम जितने अधिक रहते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण तीव्र गति से होता है। और इसके बाद लंबे काल की फरिश्ता स्थिति के बाद हम देवताई स्थिति को प्राप्त करते हैं, और उस देवताई स्थिति में हमारी 16 कलाएं देवताई स्थिति में आते ही घटनी शुरू हो जाती है। जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं तो कलाएं बढ़ती जा रही है, तो देखा जाए तो हमारी टॉप स्थिति तो फरिश्ता स्थिति है, देवताई रूप में आते ही उतरती कला शुरू हो जाएगी। तो ये भी ईश्वरीय मशीनरी है जिससे 5000 साल की अशुद्धि केवल संगम युग के छोटे से पीरियड में खत्म हो जाती है, और हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप को धारण कर लेती हैं। इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहो, कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहो, जब चाहो वतन में आ जाओ, बाबा के पास न समय की बंदिश है और न स्थान की बंदिश है। तो हम ब्राह्मण बच्चे समय की समीपता को देखते हुए जल्दी जल्दी अपने फरिश्ता रूप को धारण करें, और बाबा हमसे जो चाहते हैं वो हम कर दिखाएं, यही बाबा की हमसे आश है। अभी हम कुछ मिनट्स के लिए इस फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सीधी कमर, हाथ में कुछ भी पकड़ा हो उसे छोड़ देंगे। और जैसा कि हम चिंतन करते आ रहे हैं अपने मूल स्वरूप का, शरीर मुखोटा है, मुखोटा माना ही मुंह खोटा, खोटा मुंह, इसके भीतर असली मुखड़ा है, उस असली मुखड़े को देखिए। कितना सुंदर है वो असली रूप, शाश्वत रूप। शरीर तो मिले और छूटे बदलते रहे, लेकिन मेरा ये रूप अविनाशी है। देखिए अपने बेदाग रूप को, चमकते हुए रूप को, जिसमें से किरणें निकल रही हैं। भ्रकुटी के चारों ओर से ये किरणें संपूर्ण एटमॉस्फेयर में फैल रही हैं। चिंतन कीजिए, मैं प्रकाशमान चेतना मेरे चारों ओर प्रकाश का ओरा, मैं निर्बंधन स्वतंत्र भारहीन संकल्प से जब चाहूं जहां चाहूं पहुंचने वाली, मैं डबल लाइट आत्मा, कुछ पल के लिए उड़ान भर रही हूं एक पवित्र धाम की ओर, भ्रकुटी सिंहासन को छोड़ प्रकाश के गोले के रूप में मैं बादलों के बीच तैर रही हूँ। मुझसे दिव्य रश्मियां फैल रही हैं आकाश तंत्र में, ग्रहों सितारों तक ये रश्मियां पवित्रता फैला रही हैं। पृथ्वी के कण कण तक, प्रकृति के कण कण तक ये प्रकाश रश्मियां अपना ओज और तेज भेज रही हैं। मैं तेजस्वी फरिश्ता लाइट का गोला अब बादलों से भी पार, पांचों तत्वों से भी पार पहुंच गया हूं फरिश्तों के लोक में, जहां फरिश्तों का बादशाह सबसे बड़ा फरिश्ता मुझे अपनी बाहों में लेने को आतुर है। मैं थवल थवल उजला उजला प्रकाशमान फरिश्ता समा गया हूं उन प्रकाशमय बाहों में। प्यारे बाप दादा के मस्तक से दो शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तक में प्रवेश हो रही हैं। उनके लाइट के नेत्रों से निकलती वरधानी लाइट मुझ में समा रही है। मैं परम भाग्यवान आत्मा आदि पिता और जगत पिता के सम्मुख हूं।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला बेन जी का, जिन्होंने हमें आत्मा की गहराई बहुत अलग अलग तरीके से दी।